नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादोयाजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। तीन दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंथन में शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 15 से 31 मई के बीच सीयूईटी यूजी परीक्षा आयोजित करेगी। व्लादिमीर पुतिन ने पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। तीन दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंथन में शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें एआई, बी2बी, एग्रीटेक, डिपटेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल है। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नई स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। श्री सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की उम्मीद है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमियों और विश्वस्तरीय प्रतिनिधि मंडल के भाग लेने की उम्मीद है। तेलंगाना के जगतियाल के गीता विद्यालय मैदान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में निजामाबाद, करीमनगर और पेडोपल्ली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। लोकसभा सदस्य अरविंद धर्मपुरी और निजामाबाद जिले में पार्टी के अध्यक्ष के दिनेश कुमार ने जनसभा से पूर्व सभी तैयारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी का बीते 5 दिनों में तेलंगाना में ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने देश के दक्षिणी क्षेत्र में अपने 5 राज्यों के दौरे के हिस्से के रूप में मल्काजगिरी में एक बड़े रोड शो में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले नगर कुरनूल में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया था। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के चित्र राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को आज चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने SBI को 21 मार्च तक क्रेता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि SBI को बॉन्ड की पूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने SBI के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष एक हल्फनामा दाखिल करने को कहा। इस हल्फनामा में ये दर्शाया जाना चाहिए कि SBI ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में जारी समन पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने इन समन को गैरकानूनी कहा है। पार्टी ने भाजपा सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दूसरी बार धनशोधन रोधी कानून के अंतर्गत समन जारी किया गया है। श्री केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले से ही ईडी के समन का सामना कर रहे हैं। वे इस मामले में 8 बार जारी समन पर पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं और अब उनके जीवन में सिर्फ समन बचे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA पहले से घोषित तारीखों के अनुसार 15 से 31 मई के बीच CUET UG की परीक्षा आयोजित करेगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 और 25 मई को आम चुनाव की तारीखों से बीच पड़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष M. जगदीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 26 मार्च को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद CUET UG के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या और पूरे डेटा के बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डेटा और चुनाव की तारीखों के आधार पर NTA 15 से 31 मई के बीच CUET UG परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा। मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लमछोगोई स्वीटी चौंगसेन ने डेंगू से लड़ने के लिए बहुक्षेत्रीय नियोजन पर जोर दिया। श्रीमती चौंगसेन ने आज कहा नई दिल्ली में आयोजित डेंगू सम्मेलन में कहा कि डेंगू के मामले चिंताजनक गति से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले वर्ष डेंगू के 3 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और इससे 39 मरीजों की मौत हुई। उन्होंने आग्रह किया कि सार्वजनिक सुरक्षा और शहर नियोजन के सभी हितधारकों को डेंगू के खतरे से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। हितधारकों को संसाधनों को बेहतर ढंग से साझा करने और कुशलतापूर्वक योजना बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। अतिरिक्त सचिव ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ कार्रवाई में चुनौतियों को बढ़ा दिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये सम्मेलन विचारों और अंतर्दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अरब सागर में चले 40 घंटों के अभियान के बाद पकड़े गए 35 समुद्री डाकुओं को भारतीय नौसेना के युद्धपोर्ट IMS कोलकाता से भारत लाया जा रहा है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना ने युद्धपोर्ट IMS कोलकाता में 35 समुद्री डाकुओं को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने कहा कि एक बड़े अभियान में छुड़ाए गए चालक दल के 17 सदस्यों के साथ इन समुद्री डाकुओं को भारत लाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। शनिवार को नौसेना ने संकटग्रस्त व्यापारी जहाज MV रुएन पर इन समुद्री डाकुओं की गिरफ्त से चालक दल के 17 सदस्यों को छुड़ाया। व्यापारी जहाज को भी भारत लाया जा रहा है। व्यापारी जहाज MV रुएन की समुद्री क्षमता का कल मूल्यांकन किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5वें कार्यकाल के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। श्री पुतिन ने इस देश का उनमें विश्वास और आशा का प्रतीक बताते हुए अपने पूर्व निर्धारित चुनावी जीत का स्वागत किया। 80% प्रांतों के मतों की गिनती में उन्हें 87% मिले हैं। इसके साथ वे और 6 वर्ष की कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा है कि अन्य उम्मीदवारों को 5% से भी कम मत मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान और नए उम्मीदवार व्लादिस्लोव दावन को तीसरे स्थान पर है। इस जीत के साथ श्री पुतिन जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा देने वाले सबसे मजबूत नेता बन गए हैं। श्री पुतिन ने मॉस्को में अपनी जीत की भाषण में समर्थकों को कहा कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के साथ जुड़े कार्यों को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत बनाएंगे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। दिल्ली ने बेंगलोर को 114 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बेंगलोर ने 19 ओवर 3 गेंद में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बेंगलोर के लिए सोफी डिवाइन ने 32, कप्तान स्मृति मंधना ने 31 और एलिस पेरी ने नबाद 35 रन की पारी खेली। इससे पहले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 19वें ओवर में 113 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर की ओर से सोफी मोलिंग्यू ने 3 विकेट जबकि श्रेयंका पाटिल और आशा शोभना ने 2-2 विकेट लिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।